प्रियल उन सब के सवालों के आगे घिरने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। तुम इस तरह चुप नहीं रह सकती, तुम्हें सब कुछ बताना ही होगा, निक ने कहा। प्रियल ने हामी भरी और उन्हें बताने लगी कि जब वो 5 साल पहले घर छोड़कर गई थी तो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ था। 5 साल पहले US एयरपोर्ट पर थोड़ी भीड़भाड़ थी। प्रियल ने अपनी इमरजेंसी फ्लाइट बुक कराई थी। वो बिना बताए घर से आ गई थी और इंडिया जा रही थी। मैम, योर फ्लाइट विल बी देयर आफ्टर हाफ एन आवर, एक लड़की ने अमेरिकन एक्सप्रेस काउंटर पर कहा जो बुकिंग एरिया में मौजूद थी। प्रियल वहां से वेटिंग एरिया में आ गई। थोड़ी देर पहले जो भी हुआ था वो उससे अभी भी उभर नहीं पा रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने लगी स्क्रीन पर गई, जिसमें उसे प्रियंका जी, मिस्टर दत्ता और मिस्टर जॉनसन की रोड एक्सीडेंट में हुई मौत की न्यूज़ दिख रही थी। प्रियल ने जैसे ही वो न्यूज़ देखा तो शॉक होकर वहीं पर बेहोश हो गई। आसपास के लोग उसे वहीं पास के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। अगले दिन प्रियल को होश आया। वो वहां से जाने की कोशिश करने लगी, तभी एक नर्स दौड़कर आई। प्रियल ने रोते हुए कहा, प्लीज लेट मी गो, माई मॉम। क्या हुआ है, ऐसे बुरी तरह रो क्यों रही हो? देखो, ऐसे उठकर मत भागो, तुम अभी इस सिचुएशन में नहीं हो कि कहीं भी जा पाओ, पास मौजूद इंडियन नर्स ने कहा। मुझे मेरी मॉम के पास जाना है, वो इस दुनिया में नहीं रही, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरे भाई बहन मेरा इंतजार कर रहे होंगे, प्रियल ने सुबकते हुए कहा। लेकिन अभी तुम बहुत वीक हो, डॉक्टर तुम्हें कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं देंगे। प्रियल उसकी बात को अनसुना कर वहां से उठकर जाने की कोशिश की, लेकिन बेहोश होकर फिर से गिर गई। नर्स ने उसे संभालते हुए कहा, मैंने कहा था ना, अभी तुम इस सिचुएशन में नहीं हो कि कहीं जा पाओ, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो। उसकी मदद के लिए एक और नर्स आई। उसने उसे बेड पर लिटाते हुए बोला, लगता है इसकी मॉम की डेथ हो गई है, उस वजह से इसे इमोशनल शॉक लगा है, तभी कल से बार बार बेहोशी में भी अपनी माँ का नाम बड़बड़ा रही थी। हाँ, उसने मुझे बताया कि इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ, तब तक तुम इसका ध्यान रखना, कहकर वो पहली वाली नर्स वहाँ से डॉक्टर को बुलानी चली गई। प्रियल लगभग 5-6 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रही। डॉक्टर अभी भी उसे कहीं जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। लेकिन एक दिन जब उसके आसपास कोई नहीं था, तब वो परी और प्रियंका के बारे में सोचकर वहां से भाग गई और सीधे दत्ता मैंशन पहुंची। दत्ता मैंशन में अनिल और मीता नीचे हॉल में बैठे थे, जबकि रोहन और शालू ऊपर थे। शालू और रोहन वहां से वापस इंडिया जाने की ही तैयारी कर रहे थे। प्रियल रोते हुए अंदर आई। प्रियल रोते हुए जोर से चिल्लाई, परी, परी, प्रियंक, कहाँ हो तुम दोनों? मैं आ गई हूँ, मीता ने कहा। लो, इसे भी खबर हो ही गई। ठीक कहा तो इतने दिन तक? तुम्हारा पागल पिता तुम्हारे भाई और बहन को लेकर चला गया है। बेचारे दोनों बड़े आस लगाकर बैठे रहे कि कब उनकी प्रियल दी आएगी और उन्हें लेकर जाएगी, प्रियल ने कहा। लेकिन प्रियंका और परी निक के घर पर क्यों जाएंगे? ये घर है ना, आप लोग अभी तक यहाँ क्यों रह रहे हो? अनिल ने कहा, क्योंकि अब से ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पर है और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई कहाँ भी रहे, बस तुम यहाँ से निकलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये प्रॉपर्टी सिर्फ आपके भाई की नहीं, मेरे पापा की भी है, आप मुझसे मेरा हक बिल्कुल नहीं छीन सकते हैं, प्रियल ने कहा। प्रियल के मुंह से प्रॉपर्टी की बात सुनकर मीता आंटी को इतना गुस्सा आया कि वो प्रियल का हाथ पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर लेकर गईं। मीता ने कहा, निकल यहाँ से, तेरे पिता को इतना घमंड है अपनी प्रॉपर्टी पर तो फिर तुझे और क्या प्रॉपर्टी चाहिए? जाकर रहना उसके पास, या उसने भी तुझे निकाल दिया सबकी तरह, तुझे कोई प्यार नहीं करता और ना ही कभी कर सकता है। अरे, पैदा होते ही तो तुम्हारी वजह से तेरी माँ की मौत हो गई, तू तो अपने बेटे को भी नहीं संभाल पाई, उसे भी मार डाला, अब तुझे प्रॉपर्टी चाहिए? मीता प्रियल को अनशन बोलकर अंदर चली गई। प्रियल वहां पर बैठकर रोने लगी। नीचे शोरगुल की आवाज़ सुनकर रोहन बाहर आया और प्रियल को देखा। रोहन ने हैरान होकर कहा, प्रियो, तुम यहाँ क्यों रह रही हो और कहाँ थी तुम इतने दिन तक? तुम्हें नहीं पता परी और प्रियंक ने तुम्हारा कितने इंतजार किया? जीजू, निक ने मुझे अपने घर से निकाल दिया था, मैं तो वापस इंडिया जा रही थी कि मैंने मम्मी की मौत की न्यूज़ देखी, उसे देखकर पता नहीं मुझे क्या हो गया था और जब होश आया तो मैंने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। इतने दिनों तक उन्होंने मुझे आने ही नहीं दिया था तो मैं वहां से भागकर यहां आ गई। क्या हालत कर ली अपनी, कितनी वीक हो गई हो, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हें निक के घर पर छोड़ देता हूँ, प्रियल की हालत देखकर रोहन परेशान हो गया। प्रियल ने कहा, नहीं जीजू, एक बार मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे वापस हॉस्पिटल ही छोड़ दीजिए, मैं जब ठीक हो जाऊंगी उसके बाद सोचूंगी कि क्या करना है, जब वो लोग मुझे छुट्टी दे देंगे तो मैं कुछ दिनों के लिए नानी के पास चली जाऊंगी, जैसे तुम्हें ठीक लगे। प्रॉमिस कीजिए कि जीजू आप इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहेंगे कि हम दोनों मिले थे, निक को तो बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ दिन नानी के साथ रहना चाहती हूँ, जब मुझे ठीक लगेगा तब मैं वापस आ जाऊंगी, मुझे ये ठीक तो नहीं लग रहा लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसा चाहती हो तो यही होगा, प्लीज अपना ख्याल रखना, रोहन ने जवाब दिया। रोहन उसी वक्त प्रियल को लेकर वापस हॉस्पिटल आया और साथ ही डॉक्टर से उसकी हेल्थ की पूरी जानकारी लेकर उनके रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहा। प्रियल ने उन्हें सारी बात बता दी थी कि वो निक के घर से निकलकर कहाँ गई थी और उसके बाद क्या हुआ था। निक ने हैरानी से कहा, लेकिन नानी ने तो कहा था कि तुम उनके पास नहीं आई हो, मैंने ही उनसे मना किया था, रॉन ने कहा। जब प्रियंका जी का फोन टूट गया था तो तुम्हारे पास वो वीडियो कहाँ से आया? प्रियल ने जवाब देते हुए कहा। जब मैंने अपना फोन ऑन किया तो मुझे मम्मी की वो वीडियो मिली। शायद उन्हें पहले इन सब के बारे में शक हो गया होगा, तो उन्होंने वीडियो को टाइमर लगाकर सेंड किया होगा। अब तो तुझे सब सच का पता चल गया ना, तो सब कुछ भुलाकर तुम जीजू को माफ कर ही सकती हो, परी ने कहा। प्रियल वहां से उठी और रूम में जाते हुए कहा, आई नीड सम स्पेस। प्रियल परी की बात का कोई जवाब दिए बिना ही रूम में चली गई। निक को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। वो उसके पीछे पीछे रूम में गया। अंदर आते ही अचानक प्रियल की नजर आईने में गई, तो वो अपना टी शर्ट थोड़ा ऊपर करके वहां पर अपनी सर्जरी के मार्क को मिरर में देखा। प्रियल ने सर्जरी के निशान को छूते हुए धीरे से कहा, निक, एक साल तक उस बच्चे को याद करके रोते रहे, जबकि उसके बारे में तो उन्हें सही से पता भी नहीं था, और अब जब उन्हें मेरी सर्जरी पता चलेगी तब तो वो मुझसे नफरत ही करने लगेंगे। मैं क्या करती, मेरी भी मजबूरी थी, और मुझे नहीं पता था कि वो कभी मुझे ढूंढते हुए यहाँ वापस आएंगे भी या नहीं। 5 साल पहले जो भी हुआ उसमें किसी की भी गलती नहीं होगी, लेकिन अब 5 साल बाद उन लोगों का पता नहीं, लेकिन मेरी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है, तो बेहतर यही होगा कि हम दोनों अब दूर ही रहें, और मुझे नहीं लगता कि सच जानने के बाद निक मुझे कभी माफ कर पाएंगे। प्रियल खुद से ही बात कर रही थी कि तभी निक जोर से डोर नॉक करने लगा। निक ने बाहर से चिल्लाते हुए कहा, ओपन द डोर गुड़िया, तुम ऐसे हम सबके सवालों से भाग नहीं सकती, बात अभी पूरी नहीं हुई है।
अब क्या बाकी रह गया आपका? आप जहाँ जिस काम के लिए यहाँ आए हो, आपको नहीं लगता कि आप उस काम से भटक रहे हो जिसके लिए यहाँ आए थे? कुछ तो सोचिए उन लड़कियों के बारे में जो जन्नत बाजार में फंसी हुई हैं। आपने मुझे भी यहाँ पर लाकर कैद कर दिया है, बोलते हुए प्रियल ने दरवाज़ा खोला। निक ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और प्रियल का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठाया। क्या कर रहे हो आप? मैंने सुन ली ना आप सबकी बात, बस बात वहीं ख़त्म हो गई, प्रियल ने घबराते हुए कहा। नहीं गुड़िया, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद सबकी ज़िंदगी बिखर सी गई है, बस कोई कुछ बोल नहीं रहा ताकि तुम्हें दुख ना हो। हाँ, क्योंकि सब आपका फेवर लेने में बिजी थे, सबको आप ही सही लगते हो और मैं गलत, प्रियल ने कहा और बोलते हुए अपने हाथों को निक के हाथों से अलग कर लिया। निक ने कहा, लेकिन मैंने तो तुम्हें गलत नहीं कहा और तुम गलत हो भी नहीं सकती। निक ने प्रियल के चेहरे से बाल हटाते हुए आगे बोला, बस हरकतें तुम्हारी बच्चों जैसी हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद सबकी ज़िंदगी वहीं रुक गई। कभी सोचा है कि आकी और एवा इंडिया में क्यों हैं? जिनी और रॉन ने शादी के 6 साल बाद भी बच्चे का प्लान क्यों नहीं किया? जैन और आलिया अभी तक अलग अलग रहते हैं, और परी अब तक सिंगल क्यों हैं? निक की बात सुनकर प्रियल को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब तक वो अपनी ही शिकायत कर रही थी, जबकि उसने ठीक से उन सब के बारे में पूछा तक नहीं था। क्या आप मुझे इन सब का कारण बताएंगे? मुझे पता है मैं पूछने गई तो उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। निक ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, आकी को इंडिया मैंने ही भेजा था। उसकी फैमिली उसे शादी के लिए प्रेशराइज कर रही थी। आकी और एवा एक दूसरे को पसंद करते थे, तो मैं से सब छोड़ छाड़ कर चली गई तो एवा आकी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। मेरे बहुत जिद करने पर उन्होंने शादी तो की, लेकिन आज भी दोनों अलग अलग रह रहे हैं। पिछले 4 सालों से बस नाम की शादी निभा रहे हैं। जिनी की हमेशा से इच्छा थी कि तुम्हारा और उसका बेबी साथ में हो। जैसे मैं और रॉन साथ में बड़े हुए हैं, वैसे ही उसका बेबी और हमारे बेबी भी साथ में ही बड़े हों। लेकिन जब तुम्हारे आने की सारी उम्मीद खत्म हो गई थी, तब उन्होंने बेबी प्लान किया, और देखो ना वो कितनी लकी है कि उसकी दुनिया में आने से पहले ही तुम हम मिल गईं। जैन और आलिया ने तो तुम्हारे बिना शादी करने से साफ मना कर दिया था, और यही वजह है कि आज दोनों का रिश्ता नाम का रह गया है, दोनों में दूरियां आ गई हैं, बोलते हुए निक की आंख नम हो गई। प्रियल ने उदास होकर कहा, मेरी वजह से परी ने भी कितना सफ़र किया होगा। हाँ, बहुत। पहले प्रियंका जी का जाना, और फिर क्या? निक ने बताया, पता है, कबीर और परी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, और कबीर को भी तुम्हारे जाने के 1 साल बाद वापस इंडिया आना पड़ा, और उसने आते वक्त परी को शादी के लिए प्रपोज़ किया था, लेकिन परी ने उसे मना कर दिया। पिछले 4 सालों से दोनों की बात तक नहीं हुई। परी किसी को कहती नहीं है, लेकिन कबीर के लिए उसका दर्द उसकी आंखों में साफ दिखता है। प्रियल, मैं तुमसे बस एक ही बात पूछना चाहता हूँ, मेरा नहीं तो कम से कम इन लोगों का तो सोच लेती एक बार। बीती बातों को दोहराने से क्या होगा, सिवाय तकलीफों की और कुछ नहीं मिलेगा, तो क्यों ना मिलकर जो बिगड़ा है उसे संभाला जाए। तो माफ़ करोगी ना मुझे? प्रियल ने कहा, मुझे टाइम चाहिए, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इन सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं अपना फ़र्ज भी नहीं भूल सकती। प्रोजेक्ट जन्नत मेरे करियर का पहला लीडिंग प्रोजेक्ट है। मैंने हमेशा किसी के अंडर में रहकर ही काम किया है। पहली बार मुझे कोई प्रोजेक्ट लीड करने का चांस मिला था, तो प्लीज़ पहले उसे पूरा करते हैं। इतने सालों में कुछ अच्छा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन तुम प्रोफेशनली बिहेव करना तो सीख ही गई। चलो अब रोना बंद करो और बाहर आ जाओ, निक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं नहीं रो रही, प्रियल ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। निक ने प्रियल को अपने पास खींच कर बोला, वैसे जिनी का सपना अभी भी पूरा हो सकता है। अगर अब हम बेबी प्लान करें तो हमारे बच्चों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा।
मतलब रॉन भी तो मुझसे एक साल बड़ा है, तो उनका बेबी भी हमारे बेबी से एक साल बड़ा हो जाएगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? प्रियल ने उसे दूर धकेला और उठकर जाते हुए कहा। बहुत बकवास था, और मत भूलिए मैंने आपको अभी भी माफ नहीं किया है। हाँ, और अब मैं तुमसे माफी मांगने वाला भी नहीं हूँ। इतने सालों की गलतफहमी या बात करने से दूर हो चुकी थी। आज पहली बार निक और प्रियल एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर रहे थे और दोनों के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी।